कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर
जगह मिले वहां बैठ जाएंगे। एक मिनट के लिए दोबारा साइलेंस में बैठेंगे। अपने जीवन को देखते हुए बहुत कुछ हम डिसाइड करते हैं कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरे परिवार का जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत लंबी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अपने जीवन को देखें, जैसा जैसा सोचा था क्या वो बिल्कुल वैसा चल रहा है? या सोचा कुछ और था और हो गया कुछ और है? पूरी जीवन को चेक करना है। कई बार बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती, और कई बार कुछ ज्यादा नहीं किया फिर भी बहुत कुछ मिल जाता है। किसी पर बहुत विश्वास किया फिर भी धोखा मिलता है। किसी के लिए कुछ नहीं किया फिर भी बहुत सहयोग मिलता है। ये सब कैसे होता है? कौन डिसाइड करता है? अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो किसके पास जाना है? जब भी जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे या जो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, तो मन कहता है ये किसने मेरे साथ ऐसा किया। छोटी छोटी बातों के लिए हम किसी न किसी पर उंगली रख देते हैं कि ये जो हुआ ये इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। लेकिन कुछ बड़ी बातें आती हैं जिसके लिए उंगली इधर उधर नहीं रखी जा सकती है। तो तब हम उंगली कहाँ रखते हैं? तब हम उंगली कहाँ रखते हैं? जो हुआ वो किसकी मर्जी से हुआ? रखते हैं ना उंगली, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। लेकिन इतना कुछ जब होता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या कभी मन में क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि भगवान की मर्जी ऐसी कैसी है? उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? हर रोज इतना कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, खुद अपने जीवन में हो रहा है, तो क्या क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि परमात्मा की मर्जी ऐसी कैसी है? एंड वाई वुड गॉड वॉन्ट के हमारे साथ ऐसा कुछ होना चाहिए? क्वेश्चन नहीं उठेगा? अगर परमात्मा की मर्जी से दुनिया चलती तो ये दुनिया कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? आंख बंद करो एक मिनट, जस्ट आंख बंद करो एक मिनट और एक दुनिया क्रिएट करो। परमात्मा की मर्जी से चलने वाली दुनिया क्रिएट करो। जहां हर चीज जो हो रही है वो उसकी मर्जी से हो रही है, हर एक की मन की स्थिति उसकी मर्जी से है, हर एक का स्वास्थ्य उसकी मर्जी से है, रिश्ते उसकी मर्जी से है, प्रकृति उसकी मर्जी से है, पत्ता पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है, ऐसी दुनिया देखो कैसी होगी। कैसी दुनिया होगी, क्या दिखता है, कैसी दुनिया होगी। हाँ, कैसी दुनिया होगी, हार्मनी होगी और क्या होगा, पीस भी होगी और क्या होगा। हाँ, ऐसी दुनिया में डॉक्टर नहीं होंगे, आपने वो नहीं देखा, क्योंकि ऐसी दुनिया में परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की मर्जी छोड़ो अपनी मर्जी भी देखो। डॉक्टर युवराज, आप चाहेंगे किसी को कैंसर हो, नहीं चाहेंगे ना हम। क्या चाहेंगे कभी किसी को बीमारी हो, क्या हम चाहेंगे कोई बच्चा पैदा ही हो रहा है बीमारी के साथ। जब हम ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे, डॉक्टर भी जब उनके साथ पेशेंट आते हैं ऐसी ऐसी चीजें लेकर, तो डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगता है कि छोटा बच्चा है देखो बीमारी हो गई, यंग लड़की है अभी शादी हुई अभी कैंसर लेकर वहां आ गई, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो जब हम चाहें तब भी ऐसा नहीं होगा, तो वो चाहे तो उस बीमारी में न दुख होगा, न दर्द होगा, न बीमारी होगी, न कोई प्राकृतिक आपदा होगी, हर एक चीज कैसा होगा, परफेक्ट। आज मेजोरिटी चीजें कैसी हैं, तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना चाहिए कि इतनी इम्परफेक्ट दुनिया को हम कह रहे हैं ये परमात्मा की मर्जी से चलती हुई दुनिया है। अगर परमात्मा की मर्जी से दुनिया चलती तो दो लॉ एप्लीकेबल होने चाहिए, एक सब कुछ परफेक्ट होता, दूसरा सबके लिए इक्वल होता। अगर आपके दो बच्चे हैं और आप उनका भाग्य लिखें तो कम ज्यादा लिखेंगे, कम ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो वो भी कम ज्यादा नहीं लिख सकता। हम अपने बच्चे के भाग्य में बीमारी लिखेंगे, नहीं वो भी नहीं लिख सकता। तो वो अगर भाग्य लिखता तो परफेक्ट होता और इक्वल होता। आज ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट है और डेफिनेटली ना इक्वल है, ये उसकी मर्जी से लिखा हुआ भाग्य नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी मन में क्वेश्चन आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुरंत अपने आप को कहना वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। एक और बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से सुना, जैसा कर्म वैसा भाग्य, जैसा कर्म वैसा फल। राइट है बात, वो राइट है बात। दो अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, एक जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, दूसरा जो हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। और हम बचपन से दोनों बातों को सुनते आए और हमने कहा राइट है राइट, दोनों कैसे राइट हो सकते हैं, दोनों कैसे राइट हो सकते हैं, दोनों में कितना फर्क है, दोनों में फर्क देखा है कितना। म्यूजिक चल रहा है कहीं जोर से, बाहर क्या है आज बोलोगी, हाँ किसका, नहीं आप उनको एक मैसेज भेजेंगे प्लीज, किसी को भी कह दो एक मैसेज देने के लिए। अभी थॉट क्रिएट करते हैं। दो बिलीफ सिस्टम है, सपोज इधर परमात्मा खड़ा है, ओके okay? एक बिलीफ सिस्टम ये है, जो कुछ हो रहा है वो इनकी मर्जी से हो रहा है, तो हमारे पास क्या पावर है? जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, इनकी मर्जी से हो रहा है, तो हमारे पास क्या पावर है? कुछ भी नहीं। ये जो चाहेंगे वो हमारी लाइफ में होता जाएगा। एक ये बिलीफ सिस्टम है। दूसरा ये बिलीफ सिस्टम है, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का भाग्य है, उसमें किसके पास पावर है? तो एक बिलीफ सिस्टम में सारी पावर किसके पास? इनके पास। मेरे पास क्या पावर? कोई पावर नहीं। दूसरे बिलीफ सिस्टम में सारी पावर किसके पास? मेरे पास। इनके पास कोई पावर नहीं मेरी लाइफ कंट्रोल करने की। अब दोनों में से कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट है? दोनों में से कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट है? अगर इनकी मर्जी से सब चले तो एक सब परफेक्ट होगा एंड दूसरा सबका इक्वल होगा। अगर हमारे कर्म अनुसार चल रहा है तो हमारे कर्म परफेक्ट नहीं है, तो हमारा फल भी परफेक्ट नहीं। हमारे कर्म इक्वल नहीं है तो हमारा फल भी इक्वल नहीं है। तो कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट होगा? चूज करें कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट होगा। जो कुछ हो रहा है वो इनकी मर्जी से हो रहा है या जो कुछ हो रहा है वो अपने कर्मों का फल हो रहा है? तो अगली बार उंगली कहां रखेंगे? तो कभी भी उंगली वहां नहीं रखनी। तो मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उंगली कहां आएगी? अब मुझे अगर इसको ठीक करना है तो किसके पास जाना है? मुझे अगर इसको ठीक करना है, अपने भाग्य को चेंज करना है, तो मुझे किसके पास जाना है? अपने पास ही जाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी? मेरी। चेंज भी किसने करना है? मैंने। हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, शक्ति लेते हैं, लेकिन ठीक हमें करना होगा। अगर हम उस पर ब्लेम डाल दें कि जो कुछ हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, और ठीक भी कौन करेगा? वो ये करेगा, तो हमारा भाग्य और उलझता जाएगा। आप कहीं कहीं जाते तो नहीं अपना भाग्य पूछने के लिए? जाते हैं किसी के पास अपना भाग्य पूछने के लिए? जितना भय बढ़ता जाता है उतना आत्मा कमजोर होती जाती है। जितना आत्मा कमजोर होती जाती है वो अपने जीवन की पावर किसी और को देती जाती है। आप जैसा कहोगे वैसा, आप जैसा कहोगे वैसा। किसी ने कहा कमरा बदल लो, किसी ने कहा घर बदल दो, किसी ने कहा नाम बदल दो, किसी ने कहा जिस रंग के कपड़े आप पहनते हैं वो बदल दो। जो सब कुछ साइंस है वो सब विज्ञान है। डायरेक्शन की एनर्जी है, प्लैनेट की एनर्जी है, नंबर की एनर्जी है, कलर की एनर्जी है, सब एनर्जी है। लेकिन इस सबसे ऊपर कौन सी एनर्जी है? इस सबसे ऊपर है हमारे माइंड के पावर की एनर्जी, और उसके ऊपर कौन सी एनर्जी है? परमात्मा की एनर्जी। तो हायर पावर पे वर्क करे ना, लोअर पावर पे क्यों अटकना? लेकिन अब सपोज इस कमरे में रहकर हम दो लोगों का झगड़ा होता जाता है, तो कोई हमें कहता है आपके कमरे का डायरेक्शन राइट नहीं है इसलिए आपका झगड़ा हो रहा है, आप ऐसा करो कमरा बदल दो। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कमरा बदल दें, या हम कहें हम इसी रूम में रहेंगे, संस्कार बदल लेते हैं ताकि झगड़ा कभी नहीं होगा। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोनों में से कौन सा करेंगे? दोनों में से कौन सा करना है? कौन सा ज्यादा इजी है, कमरा बदलना या संस्कार बदलना? कौन सा ज्यादा इजी है, कमरा बदलना या संस्कार बदलना? जिस चीज पर काम नहीं करते ना तो ऐसा लगता है वो सबसे मुश्किल चीज है। संस्कार बदलना, आदत चेंज करना इस दुनिया की सबसे इजी चीज है एंड सबसे वन चीज है जो फ्री में हो सकती है. बाकी कोई भी चीज के लिए खर्चा भी करो, मेहनत भी करो. अच्छा चलो एक कमरा तो बदल दिया, फिर दूसरे कहीं गए वहां उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब वो भी कमरा बदलो, फिर वो भी घर बदलो. तो कमरे बदले, घर बदले, नौकरियां बदली, यहां तक कि आजकल पति पत्नी बदले. सिंपल चीज छोड़ दी, मुश्किल 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 मुश्किल, क्योंकि बाहर चेंज लाने से यहां ठीक होने वाला नहीं है, यहां ठीक करने से बाहर ठीक होने वाला है. तो जो भी चीजें हम जाते हैं भाग्य पूछने के लिए वो एक साइंस है, लेकिन हम सबके पास उससे ऊपर की साइंस है. एक है किसी से पूछो कि मेरे भाग्य में क्या है, और दूसरा ये कहो मैं अपनी चॉइस का भाग्य क्रिएट करूं. सपोज आपके पास कोई आए अपना हेल्थ चेकअप कराए, आप उसको फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, प्रेजेंट लाइफस्टाइल पूछेंगे और उसकी ब्लड रिपोर्ट स्कैन देखेंगे और आप कहेंगे भाई साहब ऐसा ही चलता रहा तो आपको आने वाले 6-8 महीने में डायबिटीज हो सकता है. विच इज ट्रू, वो बिल्कुल राइट बात है, बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल टुडे. अब वो इन्फॉर्मेशन किसी ने ली, घर गए, मुझे डायबिटीज होने वाला है, क्या करूं, ना राइट टाइम सोना, ना राइट टाइम खाना, ऊपर से नई इन्फॉर्मेशन मिली तो टेंशन बढ़ गई, तो उसको 6 महीने से भी पहले हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेस बढ़ गया. और वो कहेगा डॉक्टर साहब राइट कह रहे थे, वो कह रहे थे होने वाला है इसलिए मुझे हो गया. दूसरा घर आएगा और वो कहेगा आज से लाइफस्टाइल चेंज, खाने का समय चेंज, जो खा रहे हैं वो चेंज, सोने का समय चेंज, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन. उसको कब होगा डायबिटीज? पक्का डॉक्टर ठीक था, प्रेडिक्शन राइट थी, यस और नो? यस. फिर प्रेडिक्शन सच तो नहीं निकली, क्योंकि वो एक प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन टुडेज लाइफस्टाइल. लेकिन अगर लाइफस्टाइल चेंज कर दी, प्रेडिक्शन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी. सिमिलरली वो जो हमें प्रेडिक्शन देते हैं, आपके 6 महीने भारी हैं, आपके 2 महीने भारी हैं, इस 2 साल में आप जो कुछ करोगे उसमें कुछ सफलता आपको नहीं मिलेगी, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है, कोई आपको धोखा देगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहने वाली है, ये सब साइंटिफिक प्रेडिक्शन है. और ये प्रेडिक्शन राइट निकलेगी अगर हमें अपने संस्कार को चेंज नहीं किया, मतलब लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया. लेकिन अगर संस्कार बदल दिया तो वो प्रेडिक्शन राइट निकलने वाली नहीं. तो वो एक प्रेडिक्शन संभावना है, रियलिटी हमें बनानी है. लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन सुनते हैं, उसी को एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो वो बात सच हो जाती है. फिर हम कहते हैं उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल राइट था, फिर हम उनके पास अगली प्रेडिक्शन लेने जाते हैं. और कई बार तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, बुधवार को करना है कि मंगलवार को करना है, 9 बजे करना है या 10 बजे करना है. अपनी पावर खत्म. जिस चीज को यूज नहीं करेंगे. कुछ साल पहले तक हमें सबके फोन नंबर याद होते थे, हमें सबके बर्थडे याद होते थे, आज तो अपना नंबर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं किसी को बताने के लिए, बिकॉज इट्स अ मेमोरी पावर जो हमने यूज करनी बंद कर दी, यूज नहीं की, फिनिश्ड। सो सोल पावर, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है? वो हमें ये बता सकते हैं कि हमारे भाग्य में क्या होने वाला है, लेकिन उसको बदलना किसको पड़ेगा? बदलना किसको पड़ेगा? बदलना फिर भी हमें पड़ेगा। फिर हम उनसे पूछते हैं, आप कुछ बताओ ना जिससे सब ठीक हो जाए। Which means अपनी पावर को यूज नहीं करते हैं। मैंने एक बार एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि ये जो जन्म पत्री बनी, ये तो फर्स्ट डे पे बनी थी, तो ये किस आधार पर बनी? जो संस्कार वो आत्मा लेकर आई, जो कर्म वो आत्मा लेकर आई, लेकिन इस जीवन काल में जो उसने किया उसके हिसाब से जन्म पत्री तो चेंज होनी चाहिए ना। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताई। उन्होंने कहा मेजोरिटी लोग अपने संस्कार बदलते नहीं है, और अगर आप संस्कार बदलोगे नहीं, मतलब लाइफस्टाइल को बदलोगे नहीं, तो वो प्रेडिक्शन राइट निकलने वाली है। मैंने कहा अगर संस्कार बदल दिए किसी ने तो? उन्होंने कहा अगर संस्कार बदल दिए तो ये डॉक्यूमेंट उसके लिए वैलिड नहीं। इट्स नॉर्मल ना, आप एक डॉक्टर हैं, ये भी तो एक साइंस है। आप किसी को उसकी बीमारी की प्रेडिक्शन आज के लाइफस्टाइल के बेसिस पे देते हैं। आप किसी को कहेंगे आप अगर रोज ड्रिंक करेंगे, ऐसा करेंगे, उठेंगे ही नहीं, वॉक नहीं करेंगे, तो आपका 6 महीने साल बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, विच इज राइट। लेकिन अगर उसने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, आपकी सारी प्रेडिक्शन रॉन्ग। सो लेट्स नॉट टेक द प्रेडिक्शन एज इट इज एंड से मेरे साथ तो ऐसा होने ही वाला है, दिस इज वीक सोल। एंड हम सब कौन सी सोल है? हम सब कौन सी सोल है? पावरफुल सोल है। तो भाग्य पूछने ये बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बात हम कोई सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन फिट हो जाती है। इन्फॉर्मेशन डिलीट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ऐसे ही बैठकर किसी से नहीं पूछ लेना चाहिए आपको क्या मेरे जीवन में क्या होने वाला है बता दो। नो, इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई, निकालनी मुश्किल। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमारा भाग्य। कर्म मतलब क्या? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। कर्म मतलब सिर्फ वो नहीं जो हम बोलते हैं और करते हैं, कर्म मतलब सबसे पहले जो हम सोचते हैं। क्योंकि जो एनर्जी मुझसे निकल बाहर जा रही है वो है मेरा कर्म। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी मुझसे निकलकर बाहर जा रही है? मेरी सोच। तो सारा दिन चेक करो मेरे से क्या एनर्जी बाहर जा रही है, मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर। तो जो एनर्जी मुझसे निकल बाहर जा रही है वो है मेरा, वो है मेरा। जो एनर्जी मुझसे निकल बाहर जा रही है वो है मेरा, मेरा कर्म। जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है, लोगों का मुझसे व्यवहार, मेरी सेहत, मेरे काम कारोबार में उतार चढ़ाव, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा, वो है मेरा भाग्य। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या? कि जो एनर्जी मेरी तरफ आ रही है, कनेक्शन क्या? जो बॉल मैंने फेंकी वो मेरा कर्म, जो बॉल सामने से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा भाग्य, जो बॉल मेरी तरफ सामने से आ रही है वो क्यों आ रही है, सामने एक दीवार है, जो मैं यहां से फेंकूंगी वो हिट होगा, रीबाउंड होके वापस आएगा। मुझे ये भूल गया कि मैंने फेंका था, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि, तो मुझे ये दिख रहा है ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, और जब मुझे दिख रहा है ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसी बॉल्स क्यों आ रही है मेरे पास। और ये क्वेश्चन हमें तंग करता है और हमें लगता है वो जो मेरी तरफ भेज रहे हैं वो गलत लोग हैं। सबसे पहले मन को आंसर देना कि कुछ भी जो मेरी तरफ आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कुछ भी जो मेरी तरफ आ रहा है वो क्यों आ रहा है। सिंपल, एनीथिंग दैट इज कमिंग लाइक दिस इट इज बिकॉज इट हैड गॉन दिस वे। कब गया था मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे जाए बिना ऐसे आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। सो कुछ भी जो मेरे साथ होगा और मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो सबसे पहले अपने मन को कहना कभी ना कभी मैंने कुछ राइट। अभी यहां मेरे पास फ्लावर भी है, ग्लास भी है, ये नेम प्लेट भी है, जो मैं फेंकूंगी वो ही वापस आएगा। दैट इज लॉ ऑफ कर्मा, एनर्जी विच विल गो आउट विल रिफ्लेक्ट बैक। अब मैंने फ्लावर्स फेंके, 10-20 साल बीत गए, सडनली मेरे पास फ्लावर्स वापस आए, विच मीन्स कोई मेरे जीवन में आया और मुझे सहयोग देके चला गया। मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया था, वो बस आए, मुझे हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया और चले गए। हम कहते हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई फ्री में फ्लावर्स नहीं दे रहा। फ्लावर आपको देने वो ही आएंगे जिनको जिनको हमने कभी ना कभी ये फ्लावर फेंके थे। इसी तरह तंग करने भी वही आएंगे। फ्लावर वाले तो अच्छे ही लगते हैं जो फ्लावर देते हैं, लेकिन तंग करने भी कौन आएंगे, जिनको कभी ना कभी हमने ऑपोजिट एनर्जी भेजी थी। सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा को हमें किस लेवल पे देखना है। कार्मिक अकाउंट किसके बीच है, कार्मिक अकाउंट किसके बीच है, कार्मिक अकाउंट किसके बीच है, मेरे और आपके बीच। मैं और आप कौन है, मैं आत्मा और आप आत्मा, मेरा शरीर और आपका शरीर नहीं, मेरा रिश्ता और आपका रिश्ता नहीं, मेरा रोल और आपका रोल नहीं, मैं आत्मा और आप आत्मा। अब मैंने ये फ्लावर लिए, इस बहन की तरफ भेजे, फ्लावर भेजे और अगले दिन मैंने शरीर छोड़ दिया, ठीक है। तो आई चेंज्ड माय कॉस्ट्यूम, मैंने फ्लावर दे दिए, नाउ आई हैव गॉन इनटू अ न्यू कॉस्ट्यूम, बेबी बन गया, बेबी बड़ा हुआ, 25 साल का हो गया, ये तब तक 65-70 साल की हो गई, मैं इनके मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया। फॉर सम रीजन इनको मैं बहुत अच्छी लगती थी, होता है ऐसे कि नहीं होता, टीचर कहता है ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छा है, तो ये मुझे ज्यादा हेल्प, ज्यादा मदद, ज्यादा कोऑपरेट, ज्यादा ये। तो दूसरे लोग क्या बोलने लगे, ये पार्शियलिटी है, ये इसके साथ ज्यादा, ये बहुत लकी है, इसको ही ज्यादा ऐसा मिल रहा है। नहीं, ये फ्लावर भेज के आई थी, लेकिन उस टाइम पे फ्लावर वापस नहीं मिले, कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद फ्लावर वापस मिल रहे हैं। नथिंग, एब्सोल्यूटली नथिंग Absolutely nothing is unfair. अब इसका ऑपोजिट, मैं इनको फ्लावर का ऑपोजिट देके आई और मैंने अगले दिन शरीर चेंज कर लिया. अब मैं इनके मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया. बिना बात के इनको मेरे से प्रॉब्लम होती रहती है. मैं कुछ ठीक भी करूं तो भी इसमें वो कुछ तो गलत ढूंढ लेते हैं. होता है कि नहीं? ऐसा होता है. फिर हम कहते हैं ये बाकी सबके साथ ठीक है, इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? तो वी थिंक दे आर रॉन्ग, दे आर बैड फॉर डूइंग दैट. नथिंग इज अनफेयर. लॉ ऑफ कर्मा इज लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह, नीचे फेंकेंगे तो नीचे ही जाएगा, ऊपर कूदेंगे तो भी नीचे ही जाएगा. तो कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है वो भी हमारे अच्छे कर्मों का रिटर्न है, कोई हमारे जीवन में विघ्न डाल रहा है वो भी हमारी कोई गड़बड़ का ही रिटर्न है. इम्पोर्टेंट ये है अब क्या करना है. अब अगर ये वो है जो एज अ प्रोफेसर, एज अ कलीग, एज अ सीनियर इन माय हॉस्पिटल कुछ मेरे को तंग करते ही रहते हैं, अब अगर मैं इनके लिए इरिटेट हूं, नाराज हूं, क्रिटिसाइज करूं, हर्ट हूं, तो फिर मैं इनके लिए कौन सी एनर्जी भेज रही हूं? फिर नेगेटिव. पिछली बार क्या भेजी थी? नेगेटिव. वापस क्या आ रही है? नेगेटिव. अब क्या भेज रहे हैं? नेगेटिव. वापस क्या आएगा? नेगेटिव. फिर अगली बार फिर मिलेंगे, क्या भेजेंगे? नेगेटिव. फिर वापस क्या आएगा? नेगेटिव. तो कलयुग तो बढ़ता ही जाएगा. अब जब मुझे याद आ गया कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये पिछली बार के गड़बड़ का रिजल्ट है, नाउ आई हैव अ चॉइस इन विच डायरेक्शन टू टेक इट. तो पिछली बार मैंने इनको पत्थर भेजा था, आज ये मेरी तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, अब मैं क्या भेजू? फ्लावर भेजू? विच मीन्स कोई आपके जीवन में विघ्न डाले आप उसको दुआएं देंगे, कोई आपको तंग करे आप उसको दुआएं देंगे, वो आपको और तंग करे आप उसको और दुआएं देंगे. फिर ये हम कर सकते हैं क्या? मुश्किल है बहुत. कोशिश करनी. सोचो मंडे के बाद करना है. ये मेरे जीवन में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? पहले गलती की थी. इट्स सिंपल. मैंने पिछले 5 साल अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आज वो बीमार हुआ. इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय कर्म. ध्यान नहीं रखा, बीमार हुआ. बीमार होने के बाद क्या करना है? अब बीमार होने के बाद भी लोगों के पास दो ऑप्शन होती हैं. कुछ लोग बोलते हैं आज के बाद मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरे से नहीं होता, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, जितना जीना ठीक से छोड़ दो. मतलब बीमार होने के बाद भी कर्मा को नहीं चेंज करते हैं. लेकिन जो बीमार होने के बाद भी कर्मा को नहीं चेंज करेगा उसका आगे फल क्या होने वाला है? तो अब विघ्न कोई डाल रहा है, अब अगर उसके साथ फिर नफरत करेंगे, नाराज होंगे, उसके बारे में बुरा बोलेंगे, तो उसका रिटर्न क्या आने वाला है? इसलिए कल देखा था कि वहां से कोई कुछ भी करे, यहां से थॉट वर्ड एक्शन कैसा होना चाहिए. हमें उनके व्यवहार को कॉपी नहीं करना है, हमें अपना कर्म करना है, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है. तो अब अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हम उनको दुआएं दे सकते हैं? आपने कोई बहुत मेहनत करके कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की, कोई और आया और उसको अपने नाम पे लेकर सफलता को प्राप्त कर लिया, महिमा भी ले ली सबकी। होता है ना ऐसे, बहुत कुछ होता है जो बहुत लोगों के साथ काम करते हैं हम, होता है ऐसा ना, इट हैपेंस। अब उनको अगर आज वो सफलता मिली, महिमा मिली, कोई पुराने फ्लावर की वजह से मिली थी, अब उनके साथ उलझ कर ऑपोजिट कर्मा नहीं क्रिएट करना है। उनके प्रति कौन सी थॉट्स रखने हैं, कौन सी थॉट्स रखने हैं? हमारे आसपास लोगों के अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, 24/7 तंग करती है वो किसी को। उसका कोई पेन किलर नहीं है कि दवा खा लो थोड़ी देर मन शांत हो जाए, दर्द से राहत तो मिले थोड़ी देर के लिए, एक कांस्टेंट फियर, ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, ये मेरे से आगे निकल जाएंगे। आजकल कुछ लोग केपेबल लोग हायर ही नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने कोई ऐसा व्यक्ति हायर कर लिया जो मुझसे ही अच्छा करके आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा फिर उसके बाद, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन जिसको वो बीमारी है, हमें उसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे उसके प्रति? बीमार को बीमार से नाराज होकर दर्द को और दर्द नहीं देना। दर्द वाली आत्मा के साथ उलझ गए अगर, तो ब्लैक आएगा, ब्लैक जाएगा, ब्लैक आएगा, ब्लैक जाएगा। पहले वो दर्द में थे, अब हम दर्द में हो जाएंगे। तो सामने से कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई हमें नीचे खींचे, कोई हमारे काम में विघ्न डाले, एक्शन कुछ लेना है बोलें, लेकिन अंदर से उनके लिए एक भी गलत थॉट नहीं क्रिएट करें। सिर्फ दुआ दे कि परमात्मा इसको भी शक्ति दे कि इसकी ये बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाए। करें तो सामने से कोई भी आ रहा हो, हमारी तरफ से क्या जाना है? फ्लावर, फ्लावर एंड ओनली फ्लावर। किसके पास के पास कोई है जिसको फ्लावर देने की जरूरत है? ढूंढो ढूंढो, हर एक के पास कोई कोई होगा जिसको फ्लावर देने की जरूरत है। इट डज नॉट मीन कि एनीबडी जो बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ, इट जस्ट मीन्स किसी भी रिश्ते में अगर एनर्जी वाइट नहीं फ्लो कर रही है, तो उनकी तरफ से कोई भी एनर्जी आ रही हो, मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी जाने चाहिए? वाइट। इट कैन इवन बी एक बच्चा जो पेरेंट को तंग कर रहा है। कहना ही नहीं मानता, हमारे पैसे सारे उड़ा देता है, ठीक से बात भी नहीं करता वापस। कार्मिक अकाउंट तो बहुत अलग अलग तरह से आते हैं। जितना हमारे कर्मों में ऊपर नीचे होता जा रहा है, उतना हमारे सामने कार्मिक अकाउंट ऐसे उलझे हुए आ रहे हैं। ये जो पिछले एक दो साल में पेशेंट्स ने डॉक्टर के साथ किया, ये किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? एक समय था जब वो आकर पैर छूते थे, आपने नहीं बोला था उनको आकर हमारे पैर छुओ, लेकिन वो पैर छूते ही थे। वो भी था फ्लावर जो मिल रहा था एज अ रिटर्न ऑफ आर कर्मा। अब वो पैर छूने की बजाय हाथ उठाने लग गए, अब वो पैर छूने की बजाय भाषा भी कैसी कैसी यूज करने लग गए, अब वो पैर छूने की बजाय धमकी देने लग गए, अब वो पैर छूने की बजाय डराने लग गए हैं। क्यों हुआ? वही हम, वही वो, रिश्ता क्यों बदला? क्यों बदला? पहले हम फ्लावर भेज रहे थे तो हमें वापस फ्लावर मिल रहा था, फिर कहीं बीच में हमने कुछ और भेजना शुरू कर दिया था, उसका रिटर्न अब हमारे पास आ रहा है। अब जब रिटर्न आ रहा है तो ये नहीं कहो ये लोग गलत हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सोचो मुझे क्या चेंज करना है कि मैं क्या भेजूं जो पहले जो फ्लावर आ रहे थे वो वापस आने लग जाए। ये चॉइस हमारी है, हमको कुछ चेंज करना होगा। अगर उनको हमारी वजह से डर क्रिएट हुआ, असंतुष्टता क्रिएट हुई, तो आज हमारे जीवन में भी डर और असंतुष्टता आ गई। आज अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिसका हर चीज सही है, एक्यूरेट है, लेकिन उसके माइंड में एक थॉट फियर की बैठ गई है कि कहीं ये कोई पेशेंट मेरे साथ कुछ गलत नहीं करते। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये थॉट कुछ सालों से बैठ गई थी कि कहीं ये डॉक्टर या हॉस्पिटल अपने फायदे के लिए मेरे साथ कुछ गलत ना करते। उसका रिटर्न आज हमारे पास आया है कि हमारे अंदर ये थॉट बैठ गई है कि कहीं ये पेशेंट मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। एग्जैक्टली थॉट भी वही है जो दोनों के पास आई है अभी। अब अगर हमें अपने मन से वो डर खत्म करना है, हमें कोई ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे उनके मन से वो डर खत्म हो जाए। बोलने से डर नहीं खत्म होता, कर्मों से कुछ करना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में वो इंटेग्रिटी, हमारे काम करने के तरीके में वो ऑनेस्टी, वो ट्रांसपेरेंसी वो आ जाएगी कि पेशेंट के मन से ये थॉट खत्म हो जाएगी कि ये डॉक्टर या हॉस्पिटल मेरे को एक्सप्लॉइट ना करे, तो हमारे अंदर भी कभी ये थॉट नहीं आएगी कि ये पेशेंट मुझे एक्सप्लॉइट ना करे। इट इज अ सिंपल लॉ ऑफ कर्मा। तो चेंज किसको होना पड़ेगा? चेंज किसको होना पड़ेगा? अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो डॉक्टर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे उससे? देश में इतने लॉज हैं तो भी तो क्राइम रोज हो रहा है ना। जो तोड़ता है लॉ उसको उस टाइम लॉ याद नहीं रहता है किसी को। तो अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो कौन हमें प्रोटेक्ट कर सकता है? दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर के साथ दो लोग चलते हैं ऐसे। यस, कि कुछ हुआ तो ये उसको संभालेंगे, फिजिकली संभाल लेंगे, लेकिन सामने वाला जो नेगेटिव एनर्जी मन से दे रहा है उससे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उससे तो कोई लॉ, कोई बॉडीगार्ड, कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता हमारे को। हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? हमारी सुरक्षा हमारे कर्म कर सकते हैं सिर्फ, और कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। लोगों को बोलना बंद कर दो कि हमारे को संभालो, हमारी प्रोटेक्शन करो। कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। सपोज मैं यहां से आपसे असंतुष्ट हूं और मैं आपसे झगड़ा करने आऊं, चार लोग आपको संभाल लेंगे, मुझे आप तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन मैं यहां से जो आपके लिए सोच रही हूं और जो नेगेटिव एनर्जी भेजती जा रही हो वो कौन सा बॉडीगार्ड रोकेगा आप तक पहुंचने से? तो प्रोटेक्शन फिजिकल नहीं होती है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है इमोशनल प्रोटेक्शन। अगर मैं यहाँ से आपके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट करना बंद कर दूं, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से नेगेटिव भेजती रहूं तो आपकी बैटरी क्या होती जाएगी, डिस्चार्ज होती जाएगी। फियर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशन बन जाएगा जीवन का। तो अपनी सुरक्षा अपने कर्मों से करनी पड़ेगी। और इसीलिए कल हमने देखा कि अपनी सुरक्षा के लिए वो व्हाइट सर्कल चाहिए, व्हाइट एनर्जी, व्हाइट ऑरा। किसी की भी नेगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर आने नहीं देता। तो हमारे कर्म कैसे हो, अपनी सुरक्षा करनी है। कलयुग में रहते हुए सत्योगी कर्म करना शुरू कर दो। मतलब ब्लैक दुनिया में रहते हुए व्हाइट कर्म करो। भले आपके आसपास के सारे सर्कल भी ब्लैक होंगे ना, अगर आपका सर्कल व्हाइट होगा तो उसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके लिए हमारे कर्म कैसे चाहिए, ये नहीं सोचेंगे। आजकल तो सब लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। नो नो, सब जो कर रहे हैं उसका फल सब भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं। अगर मुझे वो फल नहीं चाहिए तो मुझे अपना कर्म सबसे अलग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दुआएं कमाना और धन कमाना दो अलग चीजें होती है। धन से सामान आता है, दुआओं से सुख आता है। आपके पास जो आ रहा है वो दर्द में आ रहा है और वो विश्वास से आ रहा है। आप कभी अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो। अगर आप किसी के पास दर्द में जाओ और संपूर्ण विश्वास के साथ जाओ, और तब अगर आपके साथ एक छोटा कर्म भी सामने वाले ने गलत किया तो आप उसके लिए कैसा सोचेंगे। आपको तो एक किलो एप्पल में एक सड़ा हुआ एप्पल कोई दे दे तो हम चार थॉट उसके लिए क्रिएट कर देते हैं, करते हैं नहीं करते हैं कि मुझे चीट किया, सारे अच्छे अच्छे ऊपर रख दिए, नीचे सड़ा हुआ रख दिया, इसके बाद नहीं जाना मैंने इसकी दुकान पर फिर से। तो ये कौन सी एनर्जी भेजी हमने, ये ब्लेसिंग का ऑपोजिट है। क्या फर्क पड़ता है, 20 रुपए का एप्पल है ऐसे ही उठाओ, उसको डस्टबिन में फेंको, 5 थॉट क्यों क्रिएट की उसके लिए, क्योंकि उसने मुझे चीट किया, वो भी एक फ्रूट के लिए सिर्फ। जब कोई दर्द में आता है वो टाइम होता है, जब कोई दर्द में है जिसको हम कहते हैं समय पर, सामने वाले को जब जरूरत है समय पर किसी को सहयोग दोगे, दुआएं जीवन भर कमाओगे। समय पर किसी को तंग करोगे उसका ऑपोजिट जीवन भर कमाओगे। इस आपका जो प्रोफेशन है ना, ये बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है कर्मों के हिसाब से, ये बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है। जैसे बिजनेस हाई रिस्क बिजनेस होता है ना, कुछ लोग छोटा बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट भी कम, लॉस भी कम। किसी का हाई रिस्क बिजनेस होता है, प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी। आपका भी हाई रिस्क प्रोफेशन है, दुआएं कमाएंगे तो भी इतनी कमाएंगे कि कोई और प्रोफेशनल उतनी दुआएं कमा ही नहीं सकता। वो तो कमा ही नहीं सकता, किसी और के प्रोफेशन में ये कैपेसिटी नहीं है कि इतनी दुआएं कमा सके। क्यों? क्योंकि आपके पास लोग दर्द में आ रहे हैं। कौन से दर्द में आ रहे हैं? मन भी दर्द में है, तन भी दर्द में है, धन का भी अभाव है। सो माइंड बॉडी मनी रिलेशनशिप, उनकी पूरी लाइफ ऊपर नीचे हुई हुई है इस टाइम। उस समय सिर्फ अगर एक लाइन प्यार से बात करके भी सहयोग दे दो ना, जो उनके दर्द को क्या करता है, कम करता है, जीवन भर का इन्वेस्टमेंट हो गया दुआओं का। लेकिन उस टाइम अगर किसी ने उसका ऑपोजिट कर दिया ना, इट इज बिकॉज दे आर इन पेन, दे आर इन पेन। और अगर उस टाइम कोई अपनी कमीशन, मेरा इसमें से क्या 10% और निकल के आ सकता है, ये सोच रहा है, तो वो धन तो कमा लेगा, लेकिन वो धन अच्छी एनर्जी के साथ घर नहीं आएगा। समय आ गया है काम करने के तरीकों को बदलने के लिए। अगर आप किसी को, अपने पेशेंट को कहीं भेजते हैं लैब से टेस्ट कराने के लिए, स्कैन कराने के लिए, एक ऑप्शन ये है कि वो 10% कमीशन आपको मिले, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 10% डिस्काउंट उस पेशेंट को मिले। अमाउंट 10% है, दुआएं पता नहीं कितने परसेंटेज में बनेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब मेरे इतने स्कैन, इतने टेस्ट, इतने MRI, इतना सब कुछ हो रहा है, वहां मुझे अगर कोई ये कहता है ना कि ये 5000 का स्कैन है, लेकिन आपके डॉक्टर ने कहा है आपको 500 रुपया इस पे डिस्काउंट देना है, आपको पता है वो कितनी बड़ी राहत होती है किसी के लिए, कितना। लेकिन हम सोच रहे हैं 10% लैब वाले से, 10% इससे, वो फार्मा कंपनी से, ये डॉक्टर्स को ऐसे थोड़ी खड़ा होना चाहिए था। ऐसे आपको भगवान का दर्जा दिया था, भगवान ऐसे नहीं खड़ा होता, वो ऐसे खड़ा होता है। कमीशन लेना हमारा प्रोफेशन नहीं था, कमीशन लेने वाला एक अलग प्रोफेशन होता है, आपको मालूम है, एक अलग प्रोफेशन है, जो यहां से भी कमीशन लेते हैं, यहां से भी कमीशन लेते हैं, यहां से भी कमीशन लेते हैं, वो उनका काम है। वो हमारा काम कहां था, कहां से कहां शिफ्ट हो गए? तो शिफ्ट हो गए तो सामने वाले भी शिफ्ट हो गए ना। फिर जब तक हम ऐसे थे वो पैर छू रहे थे, हम ऐसे हो गए वो भी बदल गए। फिर अब वो बोलने से नहीं बदलेंगे, हमें ऐसे से अब वैसे ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा वापस। ये कर्मों का फल है जो सामने आया है, कर्मों को बदल दो, साल के अंदर सब कुछ बदल जाएगा पूरे देश के अंदर। ये नहीं कहो उस गवर्नमेंट में ऐसा है, उधर ऐसा है, मैंने कौन सा कर्म किया जो मुझे चेंज करना है। एथिक्स की डेफिनेशन को बदलने की जरूरत है। बिजनेस में एथिक्स कहा करते थे, है ना, तो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कुछ अनएथिकल चीजें होती थी। एथिक्स इन मेडिकल तो कोई शब्द नहीं था पहले, कोई शब्द नहीं था। क्यों आया शब्द एथिक्स इन मेडिकल? इसलिए शब्द आया क्योंकि उसका ऑपोजिट कुछ होना शुरू हुआ। अब हम सब फरिश्ते, एंजल्स है ना सारे, अब हम एंजल्स वापस जाकर कुछ ऐसा कर्म करेंगे जो एथिक्स इन मेडिसिन, ये शब्द खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जहां कुछ गलत होता ही नहीं वहां एथिक्स शब्द लाने का कोई मीनिंग नहीं है। अपने कर्मों को, चाहे आप अपने हॉस्पिटल में अकेले हैं ये करते हुए, हो सकता है आपको अपने आसपास वालों से रेजिस्टेंस भी मिलेगा, लेकिन सत्युग लाने के लिए ये करना होता है। 3 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने आप से चेक करो, मैं अपने वर्किंग लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला सकता हूँ या ला सकती हूँ जिससे मेरा एथिक्स का डेफिनेशन बहुत हाई हो जाए, हाईएस्ट फॉर माई सेल्फ। अपने लिए चेक करो क्या क्या हम ले रहे हैं, मांग रहे हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम आस्किंग, वांटिंग टू to giving. किसी से एहसान लेते हैं अगर तो हमें उसके आगे झुकना पड़ता है. ये सिंपल है. एहसान लेंगे तो झुकना पड़ेगा. जो देने वाले हैं उनको झुकना नहीं है, क्योंकि झुकने से कहीं ना कहीं वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है. अगर हाईएस्ट इंटेग्रिटी रखने हैं तो कहीं भी कुछ भी खोना पड़ जाए लेकिन अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया तो वाइब्रेशन जाएगी डाउन. अपना कर्म गलत होगा, एनर्जी डिप्लीट होगी और सामने से कॉन्सिक्वेंस कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा. धन कमाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है धन कमाना, लेकिन धन को सफाई से कमाना है. इंटेग्रिटी से कमाना है, ट्रांसपेरेंसी से कमाना है, ऑनेस्टी से कमाना है। छोटे छोटे 10% 20% छुपे हुए रख के कमाना नहीं है, वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी नहीं है। कमाना है धन, लेकिन धन कमाने से भी ज्यादा दुआएं कमानी है। वो एप्पल वाला जिसने एक सड़ा हुआ एप्पल नीचे रख दिया था, अगर उसकी जगह उस दिन वो आपको ये कह देता कि मेरे से मत लो आज, मेरे पास फ्रूट फ्रेश नहीं है, आप सामने वाली दुकान से ले लो। मिलते हैं ना ऐसे लोग भी, मिलते हैं ना ऐसे लोग। उस दिन हम उसको क्या देते, उस दिन हम उसको क्या देते, हम दुआएं देते या नहीं देते? उस दिन उसका नुकसान हो जाता, क्योंकि उस दिन उसका फ्रूट बिकना नहीं था, तो उस दिन उसने धन नहीं कमाया। लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया, दुआएं कमाई। हम जाकर 5 लोगों को बताते हैं, पता है वो दुकानदार कितना अच्छा। उसके अगले दिन से सिर्फ हम नहीं जाते उसकी दुकान पर, 5 लोग और भी जाते हैं। और उस दिन के बाद हम उससे पूछते भी नहीं है कॉस्ट कितनी है, तोला ठीक है कि नहीं, क्या कुछ नहीं पूछते। ब्लाइंड ट्रस्ट, यही ब्लाइंड फेथ डॉक्टर्स पर हुआ करता था एक समय पर। आज सामने वाला ठीक भी बोल रहा है तो पेशेंट डाउट करता है, तो वो फेथ को हमें क्या करना है, वापस लाना है। क्योंकि डाउट से हीलिंग भी रुकती है, फेथ से हीलिंग ठीक हो जाती है। तो धन कमाना, लेकिन धन से पहले दुआएं कमाना। तो वो फ्रूट वाला जिसने पहले दिन धन नहीं कमाया, वो उसके अगले दिन से क्या कमाने वाला है? उस दिन उसने दुआएं कमाई और उसका रिजल्ट वो क्या कमाने वाला है, धन कमाने वाला है। ये लॉ है, ये लॉ है, एंड इट ऑलवेज वर्क्स। जो धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ये 100% सर्टन है। कोई भी करके देखे इसको, लेकिन हमारा उतना विजन होना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं सारा। कभी हमने सोचा कि अपने ऐसे कर्मों से हमने धन तो कमा लिया, लेकिन यहां क्या रिकॉर्ड हो गया सीडी पर? आत्मा एक क्षण में अभी शरीर छोड़ेगी, धन तो बच्चों के पास रह जाएगा, और अपने साथ क्या लेकर जाएंगे हम, अपने साथ क्या लेकर जाएंगे हम? वो कर्म, वो कर्म। वेरी वेरी केयरफुल। लोग हमारे पास दर्द में आ रहे हैं और संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। कोई अपना बच्चा आपको ऐसे देता है, डॉक्टर साहब प्लीज देखो। बाहर वो माँ अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने दे, इतना विश्वास, इतना समर्पण, इतना दर्द। और उस टाइम हम सोच रहे हैं इसमें से मेरा 10% कौन सा है, तो कोई पैर नहीं छूने वाला है फिर ऐसी इंटेंशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ सुख देना है। इतनी दुआएं कमाओ, इतनी दुआएं कमाओ, इतनी दुआएं कमाओ कि कभी कोई फार्मा कंपनी से बोलना नहीं पड़े मेरी कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करो, मेरे को आईपैड दो, मेरे को आईफोन दो। अरे नहीं, इतनी दुआएं कमाओ हर साल जा सकते हैं विदेश आप, आपको किसी से मांगना थोड़ी है। कलयुग में, कलयुग में एक चीज सर्टन है, डॉक्टर प्रोफेशन सिक्योर है। बीमारियां कम होने वाली नहीं है, बीमारियां बढ़ती जाने वाली हैं, क्योंकि लोग अपना ध्यान रख नहीं रहे हैं। तो इनसिक्योर कभी होना नहीं अपने प्रोफेशन के लिए। सत्युग में कोई डॉक्टर नहीं होंगे रखे, लेकिन कलयुग तक आपकी एकदम, लेकिन उसको कम से कम हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स इंटेग्रिटी, क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिख रहा है। तो जब वापस जाएंगे सत्योगी हीलर बन के जाना है। हर जगह से देखो कहां आप अपने पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हैं और कहां उसको सुख दे सकते हैं, कहां उसके जीवन उसके लिए इजी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। जो धन घर पर आता है, अगर मैंने इनसे अभी धन कमाया ना, लेकिन उस धन में इनका डर लगा हुआ है, तो वो धन जब मेरे घर आएगा और उस धन से मैं और मेरा परिवार जब अन्न खाएंगे, तो उस अन्न में ऑलरेडी इनके डर के वाइब्रेशन है। लेकिन अगर मैंने इनको सुख दिया, ध्यान रखा, संतुष्ट किया, वो धन कमाया और उस धन से अन्न आया, तो उस धन और अन्न में कौन सी वाइब्रेशन है? किसी की दुआएं, सुख और संतुष्टता है। तो ये कर्मा सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार पर असर करता है, क्योंकि आपके कमाए हुए धन से आपका पूरा परिवार अन्न खाता है। तो धन, अन्न, अन्न का असर धन का असर अन्न के ऊपर, अन्न का असर मन के ऊपर, मन का असर तन के ऊपर, कनेक्शन। तो प्रोसेस प्लांट है ना, धन, अन्न, मन, तन। फर्स्ट चीज क्या है? धन। तो अगर अन्न साफ हो, मन साफ हो, तन साफ हो, उसके लिए पहले धन साफ हो। इसीलिए धन के भी दो कलर होते हैं, इसीलिए तो धन के भी दो कलर है ना। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए। सारा दिन सुबह निकलो, सुबह से रात तक एक ही इंटेंशन रखो, सबको सुख देना है, सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। कोई इतना दर्द में है, उससे डॉक्टर अगर एक लाइन भी पर्सनल होके प्यार से बात कर लेता है, आधी बीमारी अधूरी ठीक हो जाती है। टाइम ज्यादा नहीं चाहिए। डोंट थिंक अब मुझे 5 मिनट की जगह 20 मिनट कैसे देने हैं। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट उस 5 मिनट में मुझे कौन सी क्वालिटी ऑफ एनर्जी देनी है। पेशेंट बढ़ते जाएंगे, टाइम कम होता जाएगा, लेकिन जितना टाइम कम होता जाएगा, उतनी वाइब्रेशन कैसी चाहिए? हाई चाहिए, हाई चाहिए। तो सारा दिन जीवन में एक ही लक्ष्य, सबको सुख देना है, सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। आत्मा का बैलेंस शीट भी साफ रहेगा और बैंक बैलेंस शीट बहुत अच्छा रहेगा, नो चिंता। जो दुआएं कमाएंगे, ये याद रखना, बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। और अगर थोड़ा सा कम धन कमा भी लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुशी और सेहत तो दुआओं से आती है, धन से नहीं आती। धन से तो सामान और इलाज होते हैं, धन से इलाज हो सकते हैं, दुआओं से सेहत आती है। धन से सम्मान आ सकता है, दुआओं से रिश्ते बनते हैं, दुआओं से सुख मिलता है। तो सारा दिन में ऐसा कर्म करें जो दुआएं कमाएं। इजी, 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 इजी। वो ना करें जो सब कर रहे हैं, वो करें जो थोड़े समय के बाद दूसरे भी आपको देखकर कॉपी कर लेंगे, कॉपी करेंगे। मेजोरिटी को ज्वाइन नहीं करना। कलयुग में सतयुग क्रिएट करना है तो अकेले अकेले रहकर ही क्रिएट करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपको एक ज्वाइन करेगा, दो ज्वाइन करेंगे, तीन ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते जाएंगे। लेकिन स्टार्ट तो एक को ही करना पड़ेगा। तो अब सामने वाला कुछ भी हमारे साथ कर रहा हो, हमारी तरफ से कौन सी एनर्जी जानी है? किसी के पास कोई नाम है जिसको क्षमा करना है? क्षमा करना है किसी को? क्षमा करना है? पुरानी बातें चित्त पर नहीं रखनी है। अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने या हमने, कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कुछ लोग हमें मिलते हैं, मिलते ही बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग मिलते हैं, मिलकर अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कैरी फॉरवर्ड, पिछली बार क्या करके आए थे। कार्मिक अकाउंट रिश्ते पर डिपेंडेंट नहीं, शरीर पर डिपेंडेंट नहीं। मुझ आत्मा का इस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है। शरीर बदल लिया, दोनों आत्माएं फिर से मिलेंगी, वहीं से स्टार्ट करेंगी जहां पिछली बार छोड़ा था। जब हम शरीर छोड़ेंगे हमारे साथ क्या जाएगा? दुनिया में लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, परमात्मा कहते हैं ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म लेकर आए थे, संस्कार और कर्म लेकर जाएंगे। एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है जो बाहर चल रहा है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जो अंदर चल रहा है। हम सारा दिन ध्यान किस पर रख रहे हैं? शॉर्ट टर्म, अंदर, यहां। यहां मेरा लॉस हो जाए लेकिन यहां लॉस नहीं होना चाहिए। यहां का लॉस रिकवर हो जाएगा, यहां का लॉस का भरना पड़ेगा। कर्म और धर्म अलग चीज नहीं होती है। हम अपने कर्म क्षेत्र पर ऊपर नीचे कुछ कर देते हैं, फिर हम जाके दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, ये कोई न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा कर्म। अपने हॉस्पिटल में मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, फिर जाके मैंने 10 सर्जरी फ्री कर दी, तो वो मेरा सेवा हो गया। जो 10 फ्री की पुण्य कमाया, दुआएं कमाई, वो भी आएंगी, लेकिन यहां जो एक गड़बड़ की वो भी आएगा। वो कोई 10-1 करके 9 नहीं आता है। आई हैव टू बी वेरी क्लियर, नो? नहीं तो मैं सोचूं बिजनेस है, थोड़ा बहुत तो इसमें करना ही पड़ता है, बाकी मैंने चैरिटी भी किया, आश्रम में भी गए, मंदिर भी खोला, हॉस्पिटल भी खोला। देयर इज नो न्यूट्रलाइजिंग। मैंने 1 ब्लैक बॉल भेजी, 10 व्हाइट बॉल्स भेजी, तो 10 व्हाइट भी आएंगी, 1 ब्लैक भी आएगी। लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, वो 10 व्हाइट बॉल्स आई, लेकिन एक ब्लैक बॉल आती है तो मुझे वो 10 व्हाइट बॉल्स एंजॉय भी नहीं करने देती जीवन के अंदर। इसीलिए दान पुण्य सेवा अलग नहीं होता है, हमारा हर कर्म दान पुण्य सेवा होना चाहिए। हर कर्म। आजकल कई बार घर में अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे और बाहर आश्रम में जाकर फिर कभी खाना खिला रहे हैं, कभी नॉट गोना वर्क। ऐसे वर्क नहीं करेगा। इस कर्म का भी रिजल्ट आएगा, उस कर्म का भी रिजल्ट आएगा। कोई न्यूट्रलाइज नहीं होने वाला है कि साल में जाकर हम गंगा स्नान कर लें तो सब धुल जाएगा। ऐसा होता तो फिर कलयुग कलयुग ही क्यों बनता? सब तो डुबकी लगा ही रहे हैं। किसमें डुबकी लगानी है? डुबकी किसमें लगानी होती है? पाप धोने के लिए है। ज्ञान की गंगा में रोज डुबकी लगा लेने का 5 मिनट। ज्ञान में डुबकी लगाना मतलब कोई भी मेरी सोच अगर गलत चल रही है, कोई मेरी बात गलत है, ज्ञान को लेकर अपनी सोच बोल कर्म को क्या करना? वॉश कर लेना, तब मेरा पाप धुल जाएगा। बाकी फिजिकली अगर ऐसे करने से पाप धुलता तो फिर हम हर एक का भाग्य परफेक्ट होता ना। आज नहीं है, जीवन में किसी से भी नहीं डरना, किसी चीज से नहीं डरना, सिर्फ अपने कर्मों से डरना। और जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं उसको कभी ये थॉट नहीं क्रिएट करनी कि कोई पेशेंट मेरे साथ गलत ना कर दे। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपकी अगर कर्मों की इंटेग्रिटी है, इतनी प्योरिटी है, सब कुछ इतना अच्छा है, कोई आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता। ये थॉट, ये डर अपने यहां से खत्म करें। बीज अगर अच्छा डाला है उसका रिजल्ट गलत हो ही नहीं सकता। यहां तक कि अगर आपके साथ कुछ करते हुए कुछ गलत हो भी गया ना, आपके पूर्व कर्मों का और दुआओं का खाता इतना है कि वो पेशेंट आपको कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पता है आपने अपना बेस्ट किया था। हो जाता है कभी कभी फिनिश्ड। दुआएं काम आती है, कमाई हुई। दुनिया में लोग कहते हैं ना प्रॉब्लम आई लेकिन किसी की दुआ लगी सब ठीक हो गया। तो वो दुआ कब लगी? जीवन में कमाई। इसलिए कर्म अगर सही है यहां से डर हटा दें। नोबडी विल एवर 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 डू एनीथिंग रॉन्ग विद यू। बिकॉज आपने कोई इन्वेस्टमेंट वैसा किया ही नहीं है जिसका रिजल्ट लॉस होने वाला है। आपके पेशेंट समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ थोड़ा भी हो गया तो भी एक्सेप्ट करेंगे। और एक्चुअली अगर रोज अपने आप को ज्ञान से भर के मेडिटेशन करके जाएंगे, माइंड शांत रहेगा, आपसे कभी गलती होगी भी नहीं, वो भी नहीं होगी, होगी नहीं। गलती तब होती है जब बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। जैसे हम स्कूल जाते थे, सब कुछ पढ़ के गए, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो हमने कहा 2+2=5। क्यों? फिर हम कहते थे केयरलेस मिस्टेक। केयरलेस मिस्टेक मतलब स्ट्रेस। तो उसके लिए औरों का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखना है। आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम सब डॉक्टर्स, इधर भी ओपीडी, उधर भी क्लिनिक, उस हॉस्पिटल में भी गए, उस हॉस्पिटल में भी गए, उधर भी गए, रात को उधर गए, सुबह उधर गए, उधर। सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है कोई। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, जो आप सबको सिखाते, घर जाने से पहले एक प्रिस्क्रिप्शन अपने लिए बनाई जाए, कितनी देर मुझे सोना है, क्या मुझे खाना है, कितने बजे मुझे खाना है, कितना समय मुझे अपने परिवार के साथ भी स्पेंड करना है, क्योंकि ये सब करने से आई बिकम अ बेटर डॉक्टर, एक दिन, दो दिन, पांच दिन नहीं है ना, ये तो जीवन भर करना है ना। गूगल कहता है इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड फार्मर का है, किसान नंबर वन। नंबर टू, वो फ्रेटर्निटी जो दुआएं कमाती है, सारा दिन जो दुआएं कमाते हैं वो सुसाइड तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि वो बिना अपना ध्यान रखे औरों का ध्यान रख रहे हैं, तो वो कभी ना कभी उनके मन की स्थिति पर असर हो जाता है। तो किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को बर्नआउट हो रहा है, और कोई अपनी गाड़ी को सेफली चलाए, रैश चला रहे हैं, बहुत सालों से रैश चला रहे हैं, लगता है यही नॉर्मल है। एक्सीडेंट एक ही बार होता है। ड्राइव सेफ, केयरफुल। कितना काम हम कर सकते हैं विद राइट स्लीप, राइट लाइफस्टाइल, दैट इज बिकमिंग अ गुड डॉक्टर एंड हीलर। करेंगे अपना ध्यान, रखेंगे अपना ध्यान, ये नहीं कहना लेकिन बहुत पेशेंट्स हैं। पता है बहुत पेशेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं शहर में, हैं या नहीं है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट बहुत पेशेंट्स हैं, इट्स अबाउट और। आई एम बीइंग अनफेयर टू माय पेशेंट इफ आई एम टायर्ड, आई एम फटीग्ड। वी हैव टू टेक केयर। कल सुबह कोई आपके ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ होने वाला है और आप रात को ठीक से सो के नहीं आए, फिर उसको गलती नहीं कहा जाता, फिर हम कहें गलती हो गई। वो गलती नहीं होती है, वो लैक ऑफ सेल्फ केयर की वजह से एफिशिएंसी में गलती है। कई बार हम सुनते नहीं कि किसी की ट्रक चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते आंख ऐसे झपकी, आंख झपकी, भाग्य बदल गए लोगों के। तो फिर तो जो गाड़ी चला रहा है उसको ठीक से सोना है, जो फ्लाइट आपका पायलट चला रहा है उसकी चेकिंग होती है, तुम इतना सोए, कितना टाइम तुमने फ्लाई किया, कितना टाइम के बाद तुम जाओगे उधर, लेकिन जो ऑपरेशन कर रहा है उसकी कोई चेकिंग नहीं कर रहा कि आप ठीक से सो कर आए हैं। चेकिंग हो रही है? नहीं हो रही ना, ये होना चाहिए। So we have to start doing it for ourselves. आज अगर पायलट कहे आज मैं इसकी फ्लाइट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से जब मुझे छुट्टी मिलेगी मैं दूसरी कंपनी की उसकी फ्लाइट करके आ जाता हूँ, फिर इधर आ जाऊंगा, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा उधर. सेम विद अस. सेल्फ केयर. स्लो डाउन. डू ओनली व्हाट इज कंफर्टेबल. परिवार के साथ समय बिताना बहुत 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 जरूरी है. परिवार के लिए नहीं, खुद के लिए. खुद के लिए जरूरी है. वो हमारी बैटरी को क्या करता है? चार्ज करता है. और सुबह सुबह अपने लिए आधा घंटा निकालना बहुत जरूरी है. बैटरी को चार्ज करे बिना नहीं जाना. तो जो यात्रा आज शुरू की है यहाँ पर आकर, वो यहाँ से जाने के बाद हाफ एन आवर अपने आप के लिए लाइफस्टाइल में फिक्स करना है. वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने जो ओथ होती है आपकी, उसमें एक नया पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया है. और उस पैराग्राफ में उनको उन्होंने लिखा है, सेल्फ केयर बिफोर केयरिंग फॉर अदर्स. क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे अंदर की कंपैशन खत्म होती जाती है. एंड हीलर विदाउट कंपैशन नॉट पॉसिबल. तो इसलिए यहां से जाने से पहले ये भी करना है, अपनी लाइफस्टाइल सेट करनी है और अपना वर्क एथिक सेट करना है. ये दो चीजें सेट हो गई, हमारी तरफ से हर बॉल जो जाएगी वो वाइट, दुआएं जाएगी, दुआएं आएंगी. दुनिया में क्या हो रहा है, डोंट गेट स्केयर्ड. आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता. ये कलयुग है, कलयुग भी घोर कलयुग है. हमें नहीं पता आने वाले समय में और क्या होने वाला है. आज जो हो रहा है, 5 साल पहले नहीं सोचा था कभी कि ऐसा भी हो सकता है. 5 साल बाद क्या होगा, वी डोंट नो. हम सिर्फ किस पर ध्यान रख सकते हैं? अपने कर्मों पर. तो हमारा भाग्य कौन लिखता है? हमारा भाग्य कौन लिखता है? हम खुद. तो मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म मेरा भाग्य लिख रहे हैं, और परमात्मा का ज्ञान, प्यार और शक्ति मुझे सोचने, बोलने और व्यवहार करने का तरीका सिखाता है. तो परमात्मा से योग लगाकर जब हम सोचते, बोलते और करते हैं, तब हम कर्म योगी बन जाते हैं. जो हर कर्म भी योग युक्त अवस्था में कर रहा है वो कर्म योगी है. तो हम कौन से वाले फरिश्ते हैं? कर्म योगी हैं. कर्म योगी मतलब वो नहीं जो सिर्फ कर्म करते हैं. कर्म योगी मतलब जो योग में रहकर कर्म करते हैं. चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठे. किसी को क्षमा करना है, पुरानी बात खत्म करनी है. अब हमें क्लैरिटी है कि वो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. क्योंकि कभी ना कभी कुछ हुआ था. उनकी कोई गलती नहीं. हम दोनों मिलकर कुछ करके आए थे जिसकी वजह से आज ये हो रहा है. आज से चेंज. मेरी हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर प्योर डिवाइन सत्योगी है. मैं सत्योगी फरिश्ता हूं. मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दुआएं दुआएं, प्यार, सबको सुख देना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। Purpose of my life. बिल्कुल इसी साइलेंस में बैठेंगे और इस 2 मिनट में अपनी चेकिंग करेंगे कि मुझे अपने एथिक्स को कितना ऊंचा लेकर जाना है, जो मुझे देख और बदलेंगे और हम सब मिलकर इस जग को बदलेंगे।